ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 22वां अध्याय श्लोक अध्याय का शीर्षक कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय श्लोक संख्या 31। कुशकाशमयं बहे आस्तीर्य भगवान मनुहो अयजद् यज्ञ पुरुषम् लब्धा स्थानम् यतो भुवम्। मनु ने कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की आराधना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। तात्पर्य, मनु मनुष्य जाति के पिता है, अतः मनु शब्द से ही मनुष्य बना है। जिनके पास प्रचुर संपत्ति है और अच्छे पद पर हैं, उन्हें मनु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो अपने राज्य तथा वैभव को श्री भगवान की देन समझकर सदैव भक्ति में तल्लीन रहते हैं। इसी प्रकार से मनु की संतान मनुष्यों को चाहिए कि उच्च पदों पर आसीन होते हुए वे समस्त ऐश्वर्य को श्री भगवान द्वारा प्रदत्त माने, उन्हें इस ऐश्वर्य का सदुपयोग यज्ञ संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करने में करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य के सदुपयोग की यही विधि है। भगवान की कृपा के बिना किसी को धन, ऐश्वर्य, उत्तम जन्म, सुंदर शरीर यह अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। अतः जिन्हें ये सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान की पूजा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और जो उन्हें प्राप्त है उसे भगवान को समर्पित करें। जब इस प्रकार की कृतज्ञता किसी प्रकार राष्ट्र या समाज द्वारा व्यक्त की जाती है तो उनके वास स्थान वैकुंठ के समान हो जाते हैं और वे इस संसार के तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता ज्ञापित करने के लिए ही सब लोग सबके लिए कृष्ण भावनामृत है। जिसके पास जो कुछ है उसे भगवान के अनुग्रह से प्राप्त दान समझना चाहिए। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत से भावित होकर भक्ति में लगे। यदि कोई भी, चाहे वो गृहस्थ हो या नागरिक या मानव समाज का सदस्य, सुखी रहना चाहता है तो उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय इस अध्याय में हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या देवहूति को कर्दम मुनि के हवाले कर दिया और उनका विवाह हो गया और फिर स्वयंभू मनु अपने राज में लौट कर आए बर्हिष्मति नाम के शहर में। और लौटने के पश्चात भगवान की आराधना करने बैठ गए। हमारे लिए ये भी एक अच्छा उदाहरण है, खास करके हमारे गृहस्थी भक्तों के लिए। दिन भर कार्य करना है, दफ्तर व्यवसाय वगैरह में रहना है, फिर घर आकर भगवान की आराधना करनी है, जिससे कि जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, सारा घर वैकुंठ के समान बन जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहा करते थे कि जब मैं मेरे घर में लौट कर आता हूं तो मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि मैं साक्षात वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में मैं लौट कर आ रहा हूं। हमारे भक्त जो गृहस्थी में होते हैं, एक दो बच्चों से परेशान होते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के 13 बच्चे थे और फिर भी आकर वो गोलोक वृंदावन की के वातावरण देखते थे अपने घर में। दूसरे शब्दों में, परिवार के सदस्यों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ में बैठकर कृष्ण कथा करें, कृष्ण कीर्तन करें, यही एक सबसे बड़ा सीमेंट है, सबसे बड़ा एकता प्रदान करने वाला है, प्रेम प्रदान करने वाला एक मार्ग है, और फिर सब गोलोक वृंदावन की तरह बन जाएगा। प्रभुपाद जी ने यही पद्धति हमें सबको सिखलाई है, प्राचीन पद्धति है, स्वयंभू मनु इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दिन की शुरुआत करनी चाहिए कृष्ण कीर्तन से, कृष्ण कथा से, और दिन का अंत भी ऐसे ही करना चाहिए, कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन से। तब रात को जब सोते हैं, विश्राम करते हैं, सपने भी देखेंगे तो कृष्ण के सपने देखेंगे, नहीं तो सारे दिन भर जो हमने सारे प्रकार के झंझटों में हम उलझ गए थे उनके बारे में ही सपने देखते रहेंगे। तो इस तरह से चाहे वो एक गृहस्थी का परिवार हो, चाहे भक्तों का परिवार हो, चाहे ये सारा विश्व हो, वसुधैव कुटुंबकम, ये बड़ा कुटुंब हो, सभी को चाहिए कि एक होकर भगवान के गुणगान करें। इससे सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो यहां पर वर्णन देख रहे हैं कि स्वयंभू मनु कृतज्ञ भावना से भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनको तो बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है, बहुत धन उनके पास है, ऊंची पदवी है उनके पास में, स्वयंभू मनु से बढ़कर और कौन हो सकता है ब्रह्मा जी के सिवाय इस ब्रह्मांड में। स्वयं ब्रह्मा जी के सुपुत्र हैं और ब्रह्मा जी ने उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि पृथ्वी लोक का देखभाल करे, ब्रह्मांड का देखभाल करे। ऐसे ब्रह्मा जी के हरेक दिवस में 14 मनु होते हैं और स्वयंभू मनु ये सबसे पहले मनु हैं। स्वयंभू मनु, स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु और अभी वैवस्वत मनु। आज अभी वर्तमान काल में वैवस्वत मनु का राज चल रहा है, इसके बाद में भी और 7 मनु आने वाले हैं। जैसे अगले मनु होंगे सावर्णी, जो कि विवस्वान के ही पुत्र हैं। विवस्वान जो वैवस्वत मनु जो हैं, ये भी विवस्वान के पुत्र हैं, लेकिन संज्ञा नाम के पत्नी द्वारा। और विवस्वान के भाई और बहन हैं यमराज और यमुना जी, यम और यमी। और विवस्वान या सूर्यदेव की दूसरी पत्नी का नाम है छाया, और छाया की एक पुत्री है और पुत्र का नाम है शनि, जिसको अपने हॉरोस्कोप में, अपने पत्रिका में प्राप्त करके सब लोग घबराते हैं। तो ये शनि जो है, ये भी विवस्वान के पुत्र हैं और उनके छाया के द्वारा दूसरे पुत्र हैं सावर्णी। तो ये सावर्णी जाकर 8वें मनु बनेंगे और इस मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे, और ऐसे वर्णन 8वें स्कंद में पढ़ने में आता है। तो सावर्ण के बाद में आएंगे दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी इत्यादि। तो ये सारे 14 मनु होते हैं और मनु इनका कर्तव्य होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है धर्म की संस्थापना करना। भगवान जब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, कि जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म नष्ट होने लगता है तो मैं नीचे आता हूं, तो भगवान केवल अपने बारे में ही नहीं कहते हैं लेकिन अपने अलग अलग अवतारों के बारे में भी वर्णन करते हैं। तो भगवान अलग अलग जीवों को भी कभी कभी ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो उनका कार्य संपन्न कर सकें। विशेष करके धर्म की संस्थापना करने की जो कार्य है उसे वो ऐसे संत पुरुष, सज्जन संत जैसे ऋषि मुनि इनके ऊपर सौंप देते हैं। और हर चतुर्युग के उपरांत जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इसके उपरांत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, जो बड़े तपस्वी होते हैं, वो धर्म के सिद्धांतों की संस्थापना पुनः कर देते हैं। और इसमें मनु का बहुत प्रमुख योगदान रहता है। और हर एक मन्वंतर में भगवान एक अवतार लेकर आते हैं, जैसे कि अगले मन्वंतर में भगवान आएंगे सार्वभौम के रूप में, उनका नाम रहेगा सार्वभौम, और सावर्णी नाम के मनु को मार्गदर्शन करेंगे। तो हर एक मन्वंतर में भगवान भी अपना अवतार लेते हैं और अवतार लेने के बाद में वो मार्गदर्शन देते हैं, आदेश देते हैं, और मनु को उनके आदेश के अनुसार कार्य संपन्न करने पड़ते हैं। और इस तरह से धर्म की संस्थापना होती है जो कि लुप्त हो चुकी होती है कलयुग के दौरान। तो फिर मनु आकर ये वर्णाश्रम धर्म स्थापित करते हैं, चार वर्णों के हिसाब से, चार आश्रमों के हिसाब से लोगों के, मनुष्य समाज में अलग अलग कर्तव्य होते हैं। और इन कर्तव्यों को फिर से स्थापित करना, लोगों को याद दिलाना, ये सब मनु का काम होता है। इसलिए मनु ये आदि पुरुष है इस ब्रह्मांड के, ब्रह्मा जी के बाद में। ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू, क्योंकि उनके कोई भौतिक माता पिता नहीं हुए, कोई माता नहीं, साक्षात नारायण से उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। जो स्वयं भू, भू मतलब जिन्होंने जन्म लिया, तो उनको स्वयंभू कहते हैं। और उनके पुत्र जो मनु बने उनको स्वयंभू मनु कहते हैं। तो स्वयंभू मनु के पुत्र स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु, ये मनु शब्द आता है पहला मनुष्य, मनुष्य शब्द भी मनु से आता है। अंग्रेजी में जो शब्द होता है मैन, वो भी एक मनु शब्द से आता है। तो इस तरह से मनु के कर्तव्य होते हैं कि सारे ब्रह्मांड का देखभाल करें और धर्म की संस्थापना जो करते हैं। तो खुद वो अपने उदाहरण से भी हमें सिखलाते हैं कि हमें कैसे हमारे पदवी का या कैसे हमारे ऐश्वर्य का, कैसे हमारी योग्यता का हमें उपयोग करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि जिसे भी कोई ऐश्वर्य प्राप्त हो जाती है उसे ये नहीं समझना चाहिए कि ये ऐश्वर्य, ये धन है, जो भी है ये मेरा है। संसार में लोग इसलिए दुख के मारे तड़प रहे हैं क्योंकि वो सब संसार को अपना समझ रहे हैं, या कम से कम संसार को अपना बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। वास्तव में इस सारी संपत्ति तो भगवान की है, लेकिन इस संपत्ति को जब हम हरण करने का प्रयास करते हैं तो हम चोर कहलाते हैं, और इसलिए हमें इस पाप का दंड भुगतना पड़ता है। सारा संसार ये चोरी के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई भी भगवान के प्रभुत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से संसार के सारे रोग, जो कठिनाइयां हैं, उनका मूल कारण यही है कि भगवान के प्रभुत्व को, स्वामित्व को हम पहचानना नहीं चाहते हैं और अपने आप को स्वामी या प्रभु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं इस तात्पर्य में कि स्वयंभू मनु के उदाहरण से हमें सीख लेना चाहिए कि जब मनु जैसा इतना बड़ा व्यक्ति जो इतने जिम्मेदारी के पद में स्थित है, वो समझता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, सब भगवान श्री हरि का है, ऐसी भावना से वो सारे उसकी संपत्ति कृष्ण के आराधना में लगा रहा है, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। महाजनौ ये न गतः सपन्था। अगर हमें भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो महान संतों के महाजनों के पदचिन्हों में हमें चलना चाहिए। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इन चीजों को अपना समझता है तो उसका पतन हो जाता है, उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ कृष्ण भगवान का है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रह कस्य सिद्धनम्, और मैं तो केवल यहाँ एक दास हूँ, भगवान का अंश हूँ, सब कुछ भगवान की सेवा है में ही मुझे लगाना चाहिए। जिस तरह से जो गंगा जी में स्नान करने चले जाता है और गंगा जी के जल को ही गंगा जी को पुनः अर्पित कर देता है, उसी तरह से ये सारे जो सृष्टि में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, ये सारे भगवान की ही धन संपत्ति है, और हमें उसी तरह से भगवान के चरणों में उनको अर्पित करना चाहिए जैसे कि व्यक्ति गंगा जी की पूजा करता है गंगा जी के जल से ही। दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि सूर्य देव की पूजा हम करते हैं एक दीप के साथ में, दीप की अग्नि आती है सूर्य देव से ही, अग्नि भी सूर्य का ही एक अंश है, सूर्य की शक्ति है, तो सूर्य की शक्ति का प्रयोग करके हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, तो उसी तरह से ये सारे संपत्ति को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो हम जल जाएंगे इस संसार में, इस संसार की माया शक्ति जो है बहुत खतरनाक होती है, जिस तरह से छुरी बहुत खतरनाक होती है, अग्नि बहुत खतरनाक होती है, जिसके लिए कि जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, अग्नि से व्यक्ति मारा भी जा सकता है, आदमी की जान भी बचा दी जा सकती है, उसी तरह से संसार के जो इस सृष्टि के धन संपत्ति को जो इस्तेमाल करना नहीं जानता तो वो जल जाएगा। इसलिए चाहिए कि हम नम्रता से जो भी हमारे पास भगवान ने दिया है, जो बुद्धि बल सौंदर्य धन संपत्ति ज्ञान शिक्षण जो भी है, इसको हम केवल भगवान की सेवा में ही लगाएं। शास्त्र में हम कितने सारे उदाहरण देखते हैं कि भगवान जब देखते हैं कि उनका कोई भक्त अभी परिपक्व हो गया है, भक्ति में अच्छी तरह से उसकी निष्ठा आ गई है, दृढ़ निश्चय आ गया है उनकी सेवा के लिए, तो भगवान उसको भर भर के धन दे देते हैं, जैसे कि उन्होंने ध्रुव महाराज को दिया। ध्रुव महाराज तो किस पद की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे कि उन्हें ऐसा एक राज्य मिले जो कि उनके परम पिता ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हो, तो ऐसा वरदान मांगने गए थे ध्रुव महाराज भगवान से, और इतना दृढ़ विश्वास था उनको, इतना दृढ़ निश्चय था, ऐसी कड़ी तपस्या की ध्रुव महाराज ने कि शायद ही इतिहास में बड़े बड़े संतों संत ऋषियों ने भी नहीं किया होगा। और ऐसे तपस्या करने के पश्चात जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उस समय ध्रुव महाराज ने भगवान से कहा, स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे, अभी मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं हे प्रभु, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मुझे मिल गया, आप मेरे सामने प्रकट हुए, कृपा बरसाई मेरे ऊपर, मेरे हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति भक्ति की भावना जागृत हो गई। बस मेरे लिए इससे बड़ा वरदान कौन सा हो सकता है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस समय भगवान ने कहा, ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ कि तुम कुछ नहीं चाहते हो, और ये देखते हुए भी मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम अच्छी तरह से अभी मेरी भक्ति में लग रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आए थे धन की अभिलाषा करते हुए, एक राज्य की अभिलाषा करते हुए, तो मैं तो तुम्हें दूंगा ही हूं। और इस तरह से भगवान ने ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक का राज दे दिया, उनके लिए खुद का धाम दे दिया। भागवत में बताया जाता है कि भगवान ने अपना धाम जो इस ब्रह्मांड के भीतर है, एक धाम उनका यहां भी है, भगवान का धाम श्वेत द्वीप, वो अपना ही धाम भगवान ने ध्रुव महाराज को दे दिया। हम जब किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उनको थोड़ा दान दे देते हैं, या थोड़ा कुछ थोड़ी मीठी बातें करते हैं, थोड़ा सहायता करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन भगवान देखिए इतने कृतज्ञ होते हैं अपने भक्तों के प्रति कि अपना धाम भी दे देते हैं। भगवान ने कहा, तुमने मेरे लिए इतनी तपस्या की, इतना कष्ट उठाया केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, तो मैं तुम्हारे प्रति इतना कृतज्ञ हूँ कि मैं तुम्हें सारा मेरा धाम ही दे रहा हूँ। तो तुम ध्रुव लोक में रहोगे, 36,000 वर्ष तक रहोगे, और सारे संसार के ऐश्वर्य तुम्हारे वश में रहेंगी, और मेरा वरदान तुम्हारे ऊपर ये भी रहेगा कि इन सारे ऐश्वर्यों का भोग करते हुए भी तुम्हारे हृदय में मेरा स्मरण हमेशा रहेगा, मेरे विस्मृति के शिकार नहीं बनोगे तुम। इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। तो इस तरह से भगवान ने ये ठीक समझा कि ध्रुव महाराज को ऐश्वर्य, ऊंचा पद, बुद्धि, बल सब दे दें, क्योंकि वो जानते थे कि ध्रुव महाराज इसका गलत उपयोग नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह से शास्त्र में कई उदाहरण होते हैं, हमें दिखने में आते हैं, जैसे कि सुदामा जी को भी भगवान ने इतना सब दिया। सुदामा जब गए थे द्वारका अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पत्नी कह रही थी कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूं लेकिन आपके लिए चिंतित हूं, और वैसे सुदामा जी बिल्कुल भूख के मारे पतले हो गए थे और हड्डियां दिख रही थी, मांस तो कुछ था ही नहीं, केवल हड्डियां थी उनके शरीर में, और ऐसे दरिद्र अवस्था में सुदामा ने कभी कृष्ण को भूला नहीं। जबकि उनके पत्नी ने कहा कि जाके कृष्ण से कुछ मांगिए, तो सुदामा ने कहा, मैं थोड़ी जा सकता हूँ कृष्ण के पास कोई भौतिक चीज मांगने के लिए, लेकिन फिर भी गए तो सही, और ये कथा तो आप जानते हैं। और जब लौट कर आए कृष्ण का निजी संग करने के बाद में, तो आकर उन्होंने क्या देखा कि इतना विशाल रत्नों से सजाया हुआ, रत्नों का बना हुआ एक महल है, और इस महल में इतने सुंदर सुंदर दास दासियां घूम रही हैं, अलग अलग रत्नों से गहनों से आभूषित, और उनके बीच में एक महिला ने उनको देखा, उनकी ओर दौड़ती आई, बहुत सुंदर महिला थी, बहुत महंगे वस्त्र पहने हुए थे, और बाद में सुदामा ने पहचान लिया कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। अभी सुदामा ने कभी सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी कभी ऐसे कपड़े पहन सकती है, क्योंकि वो तो बहुत गरीब थे, फटे हुए कपड़े पहनते थे। तो फिर वो सुदामा समझ गए कि ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण ने ही सब कुछ मुझे दिया है। तो कृष्ण जानते थे कि वास्तव में सुदामा भक्ति में इतने पक्के हैं, इतने दृढ़ हैं, उनका हृदय इतना शुद्ध है कि अगर भी वो सुदामा को संसार भर का ऐश्वर्य दे देंगे, फिर भी सुदामा इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान ने उनको भर भर के धन दे दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि जब इस्कॉन में भक्त आते हैं तो उनका अनुभव होता है कि बस हम सेवा करते हैं और कृष्ण सब भेज देते हैं, क्योंकि भगवान जैसे जैसे देखते हैं कि ये भक्त मेरी सेवा कर रहे हैं और मेरी सेवा करने के लिए बहुत हृदय से इच्छा रख रहे हैं, तो भगवान देते हैं कि ले लो, मैं जानता हूं कि तुम इसका दुरुपयोग नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो इसलिए जो भी भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है उसे बड़ी कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, जिस तरह की यहां पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अगर हम कृतज्ञ नहीं रहेंगे तो फिर भगवान का क्रोध हमारे ऊपर आएगा, जैसे कि सुग्रीव के ऊपर आया था। रामायण की कथा तो मालूम है आपको कि जब प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी और सीता देवी के साथ में वनवास में गए थे, तो उस समय सीता देवी का भरण कर लिया रावण ने और बड़े परेशान हुए थे, दुखमय अवस्था में हुए थे प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी। इधर उधर भ्रमण करते करते आखिर में किष्किंधा क्षेत्र में पहुंचे, हनुमान जी से मुलाकात हुई और हनुमान जी फिर उनको लेकर गए सुग्रीव के पास में और उन्होंने दोस्ती का संबंध स्थापित किया। और प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि मैं वाली की हत्या करूंगा और तुम मेरी सहायता करना, मुझे लंका के ऊपर आक्रमण करना है और सीता देवी को रावण के हाथ से छुड़ाना है। तो सुग्रीव खुशी से तैयार हो गया, प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करने का मौका उसे मिल गया। और जब प्रभु राम ने वाली की हत्या की तो उस समय सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठाया, तो प्रभु रामचंद्र जी किष्किंधा शहर में ठहरे नहीं, क्योंकि वो वनवास में गए थे और उनका ये व्रत भी था कि जब तक मैं वनवास में हूं किसी दूसरे राजा के राज में प्रवेश नहीं करूं, मुझे बाहर किसी जंगल में ही ठहरना होगा, मुझे शहर में नहीं जाना है। इसलिए किष्किंधा के वन के बाहर एक जंगल में पहाड़ के ऊपर वो ठहरे और उन्होंने देखा कि अभी तो चातुर्मास आरंभ होने जा रहा है, वर्षा के मौसम आरंभ होने जा रहा है, तो इस मौसम में तो सुग्रीव अपनी सेना को लेकर लंका की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, जब वर्षा की ऋतु समाप्त हो जाएगी तो उस समय सुग्रीव को अपनी सेना एकत्र करके आक्रमण कर लेना चाहिए। वर्षा की ऋतु के समय प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी उस गुफे में रहे और वहां प्रभु राम शोक करते रहे सीता देवी के लिए। सुंदर वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि कैसे एक साधारण व्यक्ति की तरह प्रभु राम शोक कर रहे थे अपने पत्नी के लिए। तो इस तरह से जब चतुर्मास बीत गया तो प्रभु रामचंद्र ने देखा कि सुग्रीव जो है इतना बड़ा राजा बन गया है, सारे वानर सेना का राजा बना हुआ है और भोग में इतना लगा हुआ है कि बिल्कुल अपने कर्तव्य को भूल चुका है। और वास्तव में सुग्रीव इतना भोग में लगा हुआ था, इसका भी वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी रामायण में, और सारा दिन भर अपने मद्य द्रव्यों का सेवन करके नशे की अवस्था में रहता था। उसके इतने सारे रानियां थीं, उनके संग में रहता था सारा दिन, राज्य का कारोबार भी ठीक से नहीं संभालता था। तो इस तरह से जब श्री राम को पता चला तो उनको बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे वो लक्ष्मण जी को कहने लगे कि अभी जाकर तुम सुग्रीव से कहो कि अगर वो अभी अगर सुधर नहीं जाएगा, अपने इंद्रियों को वश में नहीं करेगा और लंका की ओर अपनी सेना को बढ़ाएगा नहीं, तो उसे उसी पथ पर जाना पड़ेगा जिस पथ पर उसके बड़े भाई गए थे, अर्थात उसे भी मेरे शक्तिशाली तेज जो तीर के समान तीर हैं, बिजली के समान जो तीर हैं, उनका सामना करना पड़ेगा, जो कि कृतज्ञता प्रकट नहीं करता। इतना नीच व्यक्ति कोई नहीं है संसार में, और ऐसे व्यक्ति का बोझ मैं सहन नहीं कर सकती। तो श्री राम कहने लगे कि वास्तव में जो अकृतज्ञ व्यक्ति होता है, जब किसी से कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद में वो बिल्कुल कृतज्ञ नहीं रहता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पापी कहलाता है। हम देखते हैं कि आजकल कितनी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कितने लोग हमारे पास में आते हैं, कभी कभी हमने इस व्यक्ति के लिए ऐसा किया लेकिन आज ये हमारे पीठ में छुरी लगा रहा है, ये हमारे बारे में ऐसा कर रहा है, मैंने इसके लिए इतना किया और आज फिर ये मेरी ओर देख भी नहीं रहा है। और खास करके राजनीति के क्षेत्र में हम इसको हर रोज देखते हैं, कोई नई नई इनकी लीलाएं होती रहती हैं। तो ऐसे ये संसार में हम देखते हैं कि लोग कृतज्ञ नहीं होते हैं। तो कृतज्ञ होना ये एक मनुष्य धर्म है कि अगर एक भी छोटी सी वस्तु हमें कहीं से मिलती है तो हमें उस व्यक्ति के प्रति कितना आभारी होना चाहिए। तो जब छोटे से वस्तु के लिए हमें आभारी होना चाहिए, तो जब भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया हुआ है और इसके प्रति हम भगवान के प्रति आभारी नहीं रहे, तो सोचिए ये कितना पाप होगा। तो श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण अभी जाके तुम सुग्रीव को थोड़ी दो बातें सुनाओ। तो लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया अपने अपने बड़े भाई के बातों को सुनकर, और जैसे जैसे लक्ष्मण गए किष्किंधा की ओर और किष्किंधा के बाहर खड़े रहे, लाल लाल आंखें, और घोषणा की कि सुग्रीव से कहो कि लक्ष्मण आए हैं यहां पर। और इस तरह से जब वाणी पहुंच गई तो अंगद जाके कहने लगे कि आपको वहां खुद आना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मण जी भी बड़े क्रोधित हैं, उनके बाण जो है तीर ऐसे लग रहा है कि तीर उनके बाण में कूद कर आ रही है, उत्सुक है आने के लिए उनके धनुष के भीतर, तो जल्दी जल्दी से आइए। लेकिन सुग्रीव इतने नशे में थे लेकिन नहीं आ पाए, और लक्ष्मण इस समय तो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन कर रहे थे लेकिन सीधे अंदर चले गए, राजमहल में चले गए, और उनके जो रानियां थी जिस जगह में जहां पर वो रहती थी उनके बीच में चले गए, जो कि पहले कभी करते नहीं थे, योग्य नहीं था, तो अपना सिर नीचे करके चले गए, क्योंकि वो रानियों को देखना नहीं चाहते थे उनके कमरे में, लेकिन सीधा गए बलि सुग्रीव के पास में। सुग्रीव ने जब देखा तो सारे थरथराहट होने लगे, कांपने लगे, और उठे और मीठी मीठी बातों में सुग्रीव को शांत करने, लक्ष्मण जी को शांत करने लगे, और फिर आखिर में उन्होंने अपने सारे सेनापतियों को बुलाया और सेनापति इधर उधर गए सीता देवी की खोज में। तो खैर तात्पर्य यह है कि प्रभु रामचंद्र जी ये बता रहे थे कि मैंने सुग्रीव की इतनी सहायता की, मेरी वजह से सुग्रीव को इस पद की प्राप्ति हुई, इतना धन ऐश्वर्य भोग की सामग्री प्राप्त हुई, और ये इतना अकृतज्ञ है कि मेरे वचन को, मेरे प्रति जो वचन किया था इसने कि मेरी सहायता करेगा, इसको पूरी तरह से भूल चुका है। तो ये बात है, तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें सब कुछ दिया है, गरीब को भी दिया है, अमीर को भी दिया है, उस व्यक्ति को दिया है जिसका बहुत ऊंचा पद है, उस व्यक्ति को भी दिया है जिसका कोई पद नहीं है। जो भी कुछ हम हैं ये केवल भगवान की कृपा से है और वैष्णवों की कृपा से। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, मैं जो भी कुछ हूं मैं केवल आपकी कृपा से हूं, आपकी कृपा का मूर्तिमान स्वरूप हूं मैं, जो भी मैं कर पा रहा हूं, जो भी मैं हूं वो केवल वैष्णवों की, भगवान की कृपा से है। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम हमेशा अन्य भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति हम कृतज्ञ रहें। अगर कृतज्ञ नहीं रहेंगे तो पहले पहले भगवान आकर थोड़ा क्रोध प्रकट करेंगे, बाद में हमारा सब कुछ छीन लेंगे। जब प्रभु राम, तब भगवान ने देखा कि रावण जैसे असुर भोग कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे असुर भोग कर रहे हैं, और अपने धन संपत्ति का सही तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इन चीजों को उनसे छीन लिया। क्योंकि भगवान जानते थे कि ये मेरी सेवा में नहीं लगा रहे हैं, इन चीजों को मेरे धन संपत्ति को छीन रहे हैं, अपने संपत्ति से मान रहे हैं और इनका भोग कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने अलग अलग माध्यमों के से, अलग अलग तरीकों से इनको दरिद्र बना दिया, इनको खत्म कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे संसार भर में ऐश्वर्य कम होते जा रहा है। सतयुग में इतना ऐश्वर्य था, त्रेता युग में भी कितना था, द्वापर में थोड़ा कम हो गया, कलयुग में तो बिल्कुल कम हो गया है और कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता की भावना कम होती जा रही है। भगवान ने सृष्टि में इतना सब कुछ दिया है हमारे लिए, लेकिन हम केवल उग्र कर्म करते जा रहे हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण बताते हैं, एतान दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। वो कहते हैं एतान दृष्टिमवष्टभ्य, कि ऐसे दृष्टि को ग्रहण करते हैं जो लोग, कैसे दृष्टि को, ऐसे दृष्टि को कि संसार में भगवान नहीं है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत अहम अनीश्वरम, कि संसार में कोई सत्य नहीं है, संसार में कोई ईश्वर नहीं है, संसार का कोई कारण नहीं है, संसार केवल काम वासना से चलता है। तो ऐसे जो असुरी प्रवृत्ति को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, ऐसे लोग भगवान कहते हैं नष्ट आत्मनः अल्प बुद्धयः, उनकी बुद्धि कम होती है, अपने आप को नष्ट करते हैं वो, ऐसे बुद्धि से अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और फिर क्या करते हैं, प्रभवति उग्र कर्माणः, ऐसे भयंकर कार्य करते हैं, उग्र कर्म करते हैं, और जिन उग्र कर्मों से उनको भी कष्ट होता है, दूसरों को भी कष्ट होता है, पृथ्वी माता को भी कष्ट होता है, और क्षयाय जगतो अहिताः, जगत का अहित करते हैं ऐसे उग्र कर्मों से। तो इसलिए अकृतज्ञता की वजह से लोग केवल उग्र कर्म में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं। लेकिन कुंती महारानी क्या कहती हैं? कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में कहती हैं, इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्वौषध वीरुधः वनाद्रिनद्दुदन्वन्तो हिएधन्ते तव वीक्षितैः। वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अभी जब आपकी दृष्टि इस पृथ्वी पर लगी हुई है, तव वीक्षितैः, तभी क्या होता है, देखिए इन्हें, ये सारे जनपदाः, ये सारे जो गांव हैं, शहर हैं, इनका क्या हो रहा है, स्वृद्धाः, बहुत ऐश्वर्यशाली बन गए हैं, इनकी प्रगति कितनी अच्छी तरह से हो रही है। सुपक व औषधि वीरुधः, ये सारे प्रकृति जो है औषधि, ये सारे जो वन लता हैं, जो औषधि हैं, वनस्पति हैं, वीरुधः, और फिर वन अद्री अर्थात पर्वत, उदनवंतः अर्थात समुद्र, ये सब कितने धन दे रहे हैं। जो पर्वत हैं वो कितने सारे अपने धन जो है उसको धातु दे रहे हैं, और जो नदी है वो नाना प्रकार के रत्न दे रहे हैं, नदियां और जो समुद्र हैं, और जो वृक्ष हैं वो नाना प्रकार के फूल फल प्रचुर मात्रा में दे रहे हैं। और इस तरह से प्रकृति में, निसर्ग में सब कुछ कितना हरा भरा लग रहा है, सब कुछ कितना ऐश्वर्यशाली लग रहा है, और ये इसका कारण क्या है, तब वीक्षित आई ही, केवल आपकी कृपा दृष्टि आई है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान की कृपा दृष्टि होती है तो सब जगह ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य होता है, लेकिन जब भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होती तो उस समय क्या होता है, भगवान इस सारे ऐश्वर्य को फिर से खींच लेते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतनी गरीबी फैली हुई है, इतने लोग भूख के मारे मर रहे हैं। क्यों होता है? क्योंकि इतना पाप बढ़ रहा है, और सबसे भारी पाप क्या है, अकृतज्ञता। जब हम भगवान के दिए हुए देन के प्रति हम अकृतज्ञ रहते हैं। अगर हम आपके पास भी एक उदाहरण हम दूसरी जगह पे दे रहे थे कि अगर हम आपके पास आए और आपके जेब से पैसे छीनने का प्रयास करें तो तुरंत आप मेरे हाथ को पकड़ लेंगे, अपने जेब की रक्षा करेंगे, पैसे लेने नहीं देंगे मुझे, झगड़ा करेंगे मेरे साथ में। लेकिन अगर मैं आपके सामने आया और मैंने कहा कि प्रभु जी मुझे कृष्ण की सेवा के लिए थोड़े कुछ पैसे चाहिए, कृपा करके मुझे भगवान के लिए कोई फूल खरीदने हैं या कोई फल खरीदने हैं, कृपा करके मुझे दीजिए, तो आप खुशी से दे देंगे। तो उसी तरह से हम भगवान की सृष्टि से हम जबरदस्ती करके भोग लेना चाहते हैं, हम इस सृष्टि से जो भी पदार्थ है उनसे छीन लेना चाहते हैं, इसलिए नाना प्रकार के उग्र कर्म करते हैं। जैसे हम ये भीषण बम का विस्फोट करते हैं पृथ्वी के भीतर, और तेल निकालने के लिए कितने सारे हम उग्र कर्म करते हैं, और वनों को काट रहे हैं, नाना प्रकार के तरह से नाना तरह से हम इस प्रकृति को नष्ट करते आए हैं। क्यों? क्योंकि हम जबरदस्ती भोग करना चाहते हैं, पृथ्वी से धन और ऐश्वर्य को निकालना चाहते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा जबरदस्ती हम करते हैं पृथ्वी माता के साथ में, उतना ज्यादा पृथ्वी माता अपने आप को बंद करती है, अपनी जेब को बंद कर रही है। इसलिए हम देखते हैं कि अभी गरीबी ज्यादा से ज्यादा है, उतना ऐश्वर्य नहीं दिख पड़ रहा है। पहले के जमाने में इतना ऐश्वर्य था, महाभारत में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज के समय पृथ्वी माता एक कामधेनु के समान थी, सुरभि गाय के समान थी। कामधेनु मतलब जो चाहे वो देती थी, प्रचुर मात्रा में फल और जो मोतियां रत्न धातु बिन पूछे पृथ्वी माता दे देती थी। ऐसे नहीं कि हमें बम विस्फोट करना पड़ता था और ये जो माइनिंग इंडस्ट्री है जाकर उनको खुदाई करनी पड़ती थी, नहीं, आसानी से पृथ्वी माता दे देती थी, और गाय भी प्रचुर मात्रा में दूध देती थी। तो इस तरह से सारे जो भी आवश्यकताओं के लिए पदार्थ थे पृथ्वी माता खुद दे देती थी। क्यों? क्योंकि सभी लोग यज्ञ करते थे, सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे, और अपने सारे उनके सृष्टि के जो पदार्थ हैं उनको केवल कृष्ण की सेवा में ही लगाते थे। लेकिन अभी जैसे अधार्मिकता बढ़ते जा रही है, लोग यज्ञ करना बंद कर रहे हैं, केवल अपने भोग के लिए इन चीजों को प्रयोग करना चाहते हैं, तो भगवान पृथ्वी माता के माध्यम से इन सारे ऐश्वर्यों को खींच रहे हैं, और इसलिए लोग को आजकल इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही। जितने डिग्री करते रहे, पोस्ट ग्रेजुएट डबल ग्रेजुएट रहते हुए भी उस कागज के टुकड़े की आजकल कोई कीमत नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं। क्यों ये सब अवस्था हुई है? क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान यहाँ जबरदस्ती गरीबी कर रहे हैं, पाप की वजह से हो रहा है। केवल गरीबी हटाओ नारे लगाने से और चुनाव के समय कुछ वायदे करने से इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। समस्या का हल तभी होगा जब हम मनु स्वयंभू मनु की तरह सुबह शाम भगवान की कथा भगवान की कीर्तन करते रहेंगे, भगवान के प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता की भावना रखेंगे, और जो भी भगवान ने हमें दिया है ऐश्वर्य पद घर कुटुंब बुद्धि बल इन सब चीजों को भगवान की सेवा में ही हमें लगाना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न हुए और तब वीक्षिताए ही तब उनकी दृष्टि जब आएगी तो जैसे कुंती महारानी ने वर्णन किया था वैसे ही हमारे संसार की अवस्था हो जाएगी, सब लोग सुखी रह पाएंगे, किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर कीर्तन करते करते हम भगवान के धाम में चले जा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय।